الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفضل المغفر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم اما بعد. جب انسان عدم سے وجود میں آتا ہے, یعنی اس دنیا سے اس دنیا میں آتا ہے, یعنی پیدا ہوتا ہے, تو ایک چیز اپنے ساتھ لے کر آتا ہے, وہ چیز جو ہے اس کو جان نہیں چھوڑتی, ہمیشہ زندگی میں وہ چیز کو ساتھ رہتی ہے, اللہ کی منشا سے, اللہ کی حکمت سے, اور وہ ہے پریشانیاں, مصیبتیں, مینٹلی ٹارچر, حالات, معاملات, یہ پیدا ہوتی انسان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. کوئی بھی آدمی اسے مفر نہیں, یعنی اسے جان نہیں چھوڑا سکتا, کیونکہ اللہ کی حکمت پر ہے یہ چیز. اللہ نے اپنی حکمت سے یہ چیز رکھی انسان کے. کسی بھی سٹیج میں زندگی کے انسان ہو, شعور سنبھال, شعور سمجھ آنے کے بعد, شعور نہ پھر تو نہیں نہ پتا, شعور سمجھ ہو تو بس کا پھر پرابلم شروع ہو جاتا. ذرا بڑا ہوا سمجھ آئی تو اس کے ہاتھ میں قاعدہ دی دیا جاتا ہے, مدرسہ بھیجنا شروع ہو جاتا ہے, استاد کا غم, پڑھنے کا غم, قاعدے کا غم, وہ بڑھتے رہتے ہیں. اس کے غم جو اپنے اپنے سٹیج پہ جو ہیں غم اس کے بڑھتے ہیں. بہت سے بچے آپ دیکھیں رات کو نیند نہیں آتی, پریشان ہے, سمجھیں کیا بات ہے, یہ استاد جی سے ڈر لگتا ہے, یہ پڑھائی میں یہ ہے, تو اس کی دنیا میں اتنا خوف ستا ہے, جیسے ہم سمجھتے ہیں اس کو کوئی خوف نہیں ہے, بچے کو بس کھا رہا ہے پی رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں بس مجھے فکر ہے نوکری کا, مجھے فکر ہے کام کا. کسی بھی سٹیج پہ آپ جائیں, ہر سٹیج پہ انسان کو ایک چیز ہی ملتی ہے, اور وہ ہے پریشانیاں. اب بیچارے انسان ان پریشانیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے, دماغ بھی استعمال کرتا ہے, ذرائع بھی استعمال کرتا ہے, اسباب بھی استعمال کرتا ہے, لگا رہتا ہے, کچھ کبھی اس کو جادو سمجھنے لگتا ہے, کبھی اس کو جنات سمجھتا ہے, کبھی اس کو پریشان, مطلب ہر طریقے سے وہ اس پریشانی کو دور کرنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, انسان کے ذہن نے کام کیا, اور زیادہ سے زیادہ انسان یہ سمجھا کہ بھئی یہ جو ہے بیماری جو ہے میڈیکل پرابلم ہے, تو اب کیا کرتے ہیں, پھر ان کو میڈیکل دینا شروع کر دیتے ہیں. اس میں لوگوں نے ریسرچ کی, سائیکوٹسٹ بنے, ڈاکٹر بنے, انہوں نے دوائیں بنائی, پیسے سے ہی کرو اس کو تاکہ اس کا سکون ملے. سکون کے لیے ہوتا ہے نا آدمی جاتا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی ہو, کسی سائیکوٹسٹ پاس جائیں گے, بڑا پریشانی یہ ہے, اس کا کوئی حل بتائے, ہوتا ہے حل ہے, ٹھک سے انجیکشن مارتے نا, ایک گولی ہاتھ میں پکڑتے, چل بچہ کھا, تیرا نام سو جا, جی یہ گولی تو میں نہیں کھا سکتا, کہتا پھر نہیں کھا سکتا, پھر لگا رہا اپنے کام پہ, پھر ہے تو خطرناک بات, لیکن زمانے کے ساتھ ہے. اکثر سرخیاں سنتے ہیں, اخباروں میں آتی ہیں, فلاں فلاں شخص تھا جس نے سوسائڈ کر لی, بڑے بڑے لوگ, انٹلیکچوئلس, ان کی لسٹ ہے, آپ کو بتاؤں حیران ہو جائیں. دیکھیے ہے نا ایسے, تو اس کا مطلب کہ یہ علاج نہیں اس کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر بیماری ہر چیز کا علاج, اور یہ اللہ کی حکمت پہ ہے پریشانی. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, سچے ہوتے ہیں, سب کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور لگی ہے, ہو نہیں سکتا, کسی بچے کی بیماری, شادی کی بیماری, اس کی بیماری, دکان کی بیماری, مال دینا ہے, پیسے لینے ہیں, اس کا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ذکر میں تو بیٹھے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, لیکن ذکر میں کیا بیماریوں میں گھسے بیٹھے ہیں. नमाज पढ़ते हैं, सजदे कर रहे हैं, अंदर वही गम सारे गुस्से में। जाने ख्याल आए जो मैं बात शुरू कर रहा हूं आपसे, मुझे भी इससे बहुत फायदा होगा। पत्नी को होगा कोई बीमार बेचारा बैठा है, इसका खास कोई क्रॉनिक बीमार होगा जिसकी वजह से ना ये अल्लाह ने जहन में टॉपिक भी डाला है। अल्लाह करे उसका भी इलाज हो जाए, हमारा भी हो जाए बेचारे। बड़े बड़े बीमार बेचारे उनको समझ नहीं आता, बताया ना एंड फेज पे जैसे मर जाऊं जब बेहतर इससे जिंदगी से, वही शैतान पकड़ता है। मौत जो है वो इतनी इस किस्म की मौत की तो सजाएं जो बताई अल्लाह ताला ने तो बहुत सख्त सजा है। इस दुनिया से इस हालत में चला गया उसकी तो बहुत सजाएं, जो कमिटेड सुसाइड, इस तस्वर नहीं है इस्लाम के, लेकिन कर जाते हैं, इतना परेशान हो जाता है। अब तो ये दवाएं भी काम नहीं कर रहे जना, अब तो दवा है ही नहीं, इलाज इलाज ही नहीं है। अल्लाह कहते अब क्या है, अल्लाह कहते बीमारी भी मैंने दी है, मैंने तुम्हें ही दी है, मेरे मंशा पे दी है, तो इलाज भी मैं बताता हूं। बोले सुभान अल्लाह, उधर जाना नहीं हमने, अल्लाह की बात माननी नहीं हमने। ठीक है, मानने वालों की बीमारी थोड़ी, तो ना मानने वालों के लिए अजाब दिया अल्लाह पाक ने, बीमार परेशान ही रहे, ये पीते रहे बस डन डन डन, उसमें सोचते ना ये है जो ये काम जी करते हैं ना, उसका मतलब क्या है, सुकून ले रहे हैं बेचारे। उसके बाद जो धूमधड़ाका होता है वो तो आपको पता ही है, दोस्त होता है तो और खराफात पैदा हो जाती है। लेकिन उनके लिए एक चीज यही शैतान ने बताई कि भाई ये पानी पी जाओ शाम को, सब बस कम दूर हो जाएंगे तुम्हारे, है ना ऐसे। तो अल्लाह भाई ये बात कहते हैं कि चीज मैंने दी है, मैंने भी एक मंशा के तौर पर दी है, एक हिकमत के तौर पर दी है, बहुत फायदे हैं इसको। सुभान अल्लाह, अगर ये ना देता तो इनकम्प्लीट थे तुम, पागलो जेहन में जाना था तुम्हें, क्यों फर्क देख लो मानने वालों में ना मानने वालों में फर्क है कि बीमारी उनको भी लगी है तुम्हें लगी है, तो वो तो मैंने दिए डायरेक्ट दुनिया इनके खराब और आखिर, तो तुम क्यों उनके साथ मिल रहे हो, और तुम तो अक्लमंद हो, अल्लाह की तब क्यों देखो, अल्लाह से पूछो, अल्लाह बताएगा कुरान में। तो अल्लाह कहता है इलाज मैं बताऊंगा तुम्हें, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा इसका इलाज, करेंगे सब लोग। अल्लाह कहते हैं अल्लाह जिक्र तत्मइन्नुल कुलूब, छोटी सी आयत, कौन की इतनी इतनी आयतों के अंदर पूरी जिंदगी बंद है अल्लाह की कसम। बस दफा मैं सोचता हूँ कुरान पढ़ते पढ़ते हैं, ये इतनी सा दो लफ्जों की बनी हुई आयत होती है, पढ़ रहा था एक दो लफ्जों की आयत है, मैं तो सोच सोच पागल हो गई, इसमें तो सारे हल नजर आ रहे हैं दुनिया के, अजीब गरीब अल्लाह पाक ने कुरान जो बनाया ना, कसम खुदा की अजीब गरीब चीज है, समझ ही नहीं आता कि जिसके पास कुरान उस पर अल्लाह ने कहा कि ये तो मोमिनों के लिए शिफा है, रहमत है, तुम समझे ही नहीं उसको, रट्टे मारते रहते हो, असल चीज तो समझे नहीं, जिस मकसद के लिए मैंने कुरान को पैदा किया, उसमें सबसे बेसिक चीज अल्लाह ताला बताया, अल्लाह ताला अल्लाह बेजिक्र तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह से हो सकता ही नहीं, जोर लगा लो, पूरा जोर लगा लेना, अल्लाह सिवाय अल्लाह के जिक्र के तुम्हें इत्मीनान आएगा ही नहीं, पीछे पागल खाने चले जाओ, पीछे मौत ही करोगे, ये पागल हो गए। ठीक है तुमने जोर लगाया, परेशानी आ रही है तुम्हें, नौकरी की नौकरी मिल गई, नेक्स्ट परेशानी ऑन द डोर होगी आपके, बिल्कुल इंतजार कर रही होगी नौकरी के फौरन बाद। किसी को भी वजीए किए, मैं ऐसे लोग देखें बस ये वीजा लग जाए, बस मैं हज करूंगा फिर उमरा करूंगा, अपने सुकून बना रहे, वीजा लगते ही नेक्स्ट परेशानी सामने आती है उसकी, अब बताओ आप क्या करोगे, मर के भी चैन ना पाए तो किधर जाएंगे। अब तो ये कहते हैं कि मर जाएंगे तो जान छूट जाएगी, अलग तो मर के भी ना चैन पाए फिर कहां जाओगे। जहर ये है एक मोमिन को चाहिए सब दरवाजों को बंद कर दे, किसको पकड़ ले, जिक्र को पकड़ ले, अल्लाह में जिक्र नहीं है, क्या इलाज है ये तो हम अक्सर पढ़ते हैं, आज इलाज समझ आया है मुझे, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां तक बात नहीं छोड़ूंगा, पास हूं असर कैसे, ये बीमारी कैसे दूर करता है अल्लाह का जिक्र, दिस इज द पॉइंट, जो गया जिक्र बीमारी दूर करता है ये कैसे करता है, किस स्टेज पे जाके बीमारी खत्म होती है इंसान की। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसको परेशान आए होंगे हाल में, लेकिन अब जिक्र में बैठ के बातें कर रहे हैं तो आधी बीमारी तो वैसे खत्म हो गई होगी। उसकी वजह बताऊंगी, जिक्र है, होगी नहीं होगी। आए हुए बड़े परेशान हो गए यार ये और वो, बैठे हैं बातें शुरू हुई हैं, मजलिस में ही आई हैं तो आधी बीमारी तो वहीं रहेगी इंसान की खत्म। ख्याल नहीं है, आंखें बंद हो रही, नींद से आ रही होगी, क्योंकि सुकून तो मिलना शुरू होता है आदमी को। बोले सुबह ये आप देखें, ये को लोग क्या करते हैं, अभी इन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च से ही की है, मेडिकल से बात करता हूँ पहले। देखिए कैसा पूरा मजमून आ रहा है मेरे जहन में, ऐसा लगता है मैं तैयार करके आया हूं पूरा। क्या सिस्टम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे अल्लाह रहम फरमाते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल सिस्टम से तैयार करके मैंने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, हालांकि कुछ भी नहीं, बिल्कुल ये नमाज पढ़ते ही ख्याल दिन में आ गए कि यार ये बात नहीं। अब ये देखिए मेडिकल ने इसका क्या इलाज लिया है, आप सोचें मेडिकल क्या इलाज लेती है। ज्यादा सर तो मुझे नहीं है, लेकिन सदाई तौर पर जानता हूँ। उन्होंने सोचा भाई ये जो सारा मामला बनता है इंसान के जहन से बनता है, परेशान होते आदमी को, दुनिया में हालात तो है, नौकरी भी है, ये भी, अब वो क्या है कि वो एकदम थॉट्स बनते हैं, थॉट्स बनकर इंसान के जहन पे जाते हैं, जहन से वो स्प्रेड होते हैं, वो उसको बेचैन करते हैं, वो जाकर दिल को बेकरार कर देते हैं। रिसर्च कर ली साइंस ने, तो अब क्या करें, कहते जी इसका तो एक ही इलाज है कि जहां थॉट जाके फैल रहे हैं उस दिमाग को ही काबू कर लो। ऐसे ही है ना, ये बेटा एक साइकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, ये बताएगा उसे। वो कहते हैं कि दिमाग को काबू को, हाथ को काबू नहीं करते, आप पेट के इलाज नहीं करेंगे, किसी नहीं करेंगे, क्या डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, ब्रेन पे जाते हैं। उस ब्रेन पे ये काम करते हैं कि फिर उस पर आस्था, पहले कहते ये गोली खाओ जी, छोड़ी खाओ, ये थोड़ी खाओ जी, फिर इंजेक्शन खाओ जी, फिर फलां खाओ जी, बढ़ाते रहते हैं। क्यों, उसकी पावर इतने देते हैं कि जो दिमाग उसका जो है ना सोते, हालांकि इलेक्ट्रिक शॉर्ट देना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल उसका फ्यूज कर दोगे, है ही नहीं। अब इन्होंने एक आर्टिफिशियल इलाज दिया, इलाज है सही, समझे सही है, इंसान है ना, दिमाग तो सही लगा उसका, होता कहां सारा पैदा, दिमाग पे परेशानी है आदमी की, नींद नहीं आई, वो थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में। कल हो सकता है आपका एक मुकदमा है, उस मुकदमे में आप जीत भी जाए, मुमकिन है, वो आप खारिज भी कर दे, लेकिन रात को नींद नहीं आएगी, यार ना हुआ तो क्या करूंगा, यार इसका बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कल आपको फैसला होना है वीजे का, आप लेटे, आप वकील है, सब कुछ लग जाएगा, नहीं लगे क्यों, ख्याल नेगेटिव आएगा, नहीं लगना, नहीं तेरा वीजा नहीं लग सकता, उसको सोने देगा कि क्या चीज है थॉट्स। तो उन्होंने क्या कि इसको दो गोली, गोली देखते दिमाग के अंदर जाती है, सुन कर देती है, वो आदमी फ्यूज हो जाता, कहते इलाज हो गया, जब गोली का असर हुआ वो फिर बंदर का बंदा, फिर वहीं का फिर तोड़ने लगता दरवाजा। तो अल्लाह पाक ने इसके मुकाबले इलाज क्या दिया है, इन गोलियों के मुकाबले इलाज क्या दिया है, अल्लाह का जिक्र है। वो क्या काम करता है, सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह की तरफ से बताएगा, बिल्कुल उस काम वो इसी तरह करता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, उसका काम बिल्कुल ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट जब इंसान जिक्र करता है तो सबसे पहले अल्लाह का जिक्र जाके वो इंसान के दिमाग पे काबू करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने जिक्र के बारे में कहा कि कसरत से करो, क्योंकि थॉट्स बीमारियां बहुत ज्यादा तुम्हारी हैं, इसको कसरत के साथ करो और कंटिन्यूस करो, हमेशा करो, कुल्ल हयान, क्योंकि एक वक्त, अब क्या है देखिए कैसे होता है कि जब वो गोली जाती है, मेडिसिन काम करती है, तो उसको क्या करती है, अंदर गोली जाने के बाद, टेबलेट्स जाने के बाद, दिमाग को इंसान के फ्यूज कर देती है और थॉट्स आना बंद हो जाते हैं, वो समझता है सुकून मिल गया, सो गया। हाँ किस्सा वो ही है कि सुबह वीजा लगेगा ही नहीं लगेगा, सुबह मुकदमा जीतूंगा, हालात वही है, लेकिन अब क्यों सो रहा है, इसलिए कि दिमाग उसने पकड़ लिया है। तो अल्लाह पाक सुबह, अल्लाह ने अपने जिक्र में क्या रखा है, सुबह अल्लाह जिक्र क्या तासीर रखता है, जिक्र तासीर ये रखता है कि वो भी जाके दिमाग को कैप्चर करता है, लेकिन किस क्या फर्क क्या है कि वो फ्यूज कर देगी, टेबलेट्स आप खत्म कर देगी, لیکن اللہ کا ذکر جو اصل علاج ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، وہ جو تھاٹس تمہارے اندر آ رہے ہیں یہ آرٹیفیشل تھاک ہے، یہ سزا ہے اللہ تعالی کہ تم ان تھاٹسوں کو ختم کرو، اس کی جگہ ایک پرمننٹ تھاٹ آنا چاہیے اور وہ ہے اللہ کا. اللہ کے ذکر سے ہوتا کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے انسان اندر اللہ کی روحانیت غلبہ پا جاتی ہے، وہ دماغ کو چھا جاتی ہے، جس طرح گولی چھا جاتی ہے نا، وہ اللہ کی روحانیت انسان کے دماغ پر چھا جاتی ہے. وہ ماں کو میں نم کن تم، ہر وقت اللہ کا ہی خیال اس کے دل میں رہتا ہے، کس طرح کنٹرول کرتے تھے. اور جب خیالات پہ قابو پا لیا اور صرف اللہ ہی اللہ رہ گیا، ہر وقت اس کے دماغ میں اللہ ہی رہا اور کوئی سوچ ہی ختم نہیں رہی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول میں جاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں رہتا، کیونکہ یہ تو اللہ کا بتایا علاج ہے. تو اللہ تو اس میں ایک اور بھی چیز شامل فرما دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ میری محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر، میرا تصور بھی بڑھ جاتا ہے، اور ہر وقت وہ میری یاد میں اتنا مستحق رہتا ہے، اتنا استخراق ملتا ہے کہ کوئی چیز کو یاد ہی نہیں رہتی، بے غم کر دیا اس کو اللہ کی محبت نے. سبحان اللہ، فلا ہو گیا، اس کو پتہ نہیں ہو گیا نہیں ہو گیا کہ ٹھیک ہے. وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے دماغ سے، اس کے اندر سے ساری کیفیات اللہ ہی جو اس کے دماغ کو چھا گیا، اصل چیز جو دماغ میں آ گئی، تو جو اللہ آ گیا اس کے اندر تھاٹس میں، ہر وقت صبر میں. اسی لیے اللہ پاک نے دیکھ، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، تو اللہ نے یہی کہا کہ جب عبادت کرو میری تو کیسے کرو؟ کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، دوسرا تصویر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. وہ ایک شان ایمان والے کی یہی ہے، جب تم نے اپنے دماغ کو میرے تصور سے خالی کیا اور میری محبت تیرے دماغ پہ غالب نہ ہوئی، میرے خیالات تیرے دماغ پہ غالب نہیں ہوئے، جب تک میں تیرے دماغ سے خیالات سے نکل گیا، تو دنیا کو اپنے اندر تھما لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ساری پریشانی جو ہے تجھ پہ چھانا شروع ہو جائے، تیرا دماغ ہر وقت پریشان رہے گا، تیرا وجود پریشان رہے گا. دوسری صورت میں اگر آپ نے اللہ کو اپنے وہ غالب کر لیا، دماغ پہ اللہ ہی اللہ ہو گیا، تصورات میں اللہ ہی سما گیا، ہر وقت اللہ ہی اللہ ہو گیا، تو پھر کیا ہے کہ اس کو کوئی چیز فکر ہی نہیں رہے گا، اس کو سارے فکر ختم ہو جائیں گے. جیسے وہ گولی فکر دور کر دیتے ہیں دماغ کی، تو ایکچولی وہ کیا ہے، دماغ بالکل جو ہوگا اللہ کی طرف رجوع کر جائے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے، سن ہوگا دماغ اللہ ہی ہے. یہ ذکر کی کیفیات ہے، یہ حاصل چیز ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور اللہ نے سکھا کہ پھر ایک مقام جاتا ہے کہ ذکر کرتے کرتے بندہ اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہر فیصلے سے میرے مطمئن رہتا ہے. یہ ہے اللہ کا ذکر. اب پتہ یہی چلتا ہے کہ چاہے جتنا پریشانی ہو سب کچھ ہو، علاج اس کا کیا ہے کہ اللہ کو غالب کرو اپنے دماغ میں. یہ حالات چلتے رہیں گے، اور یہ اس میں حکمت اللہ کی کیا ہے کہ یہ بیماریاں میں نے پیدا اس لیے کی ہیں کہ تو پریشانیوں سے بیماریوں سے گھبرا کے علاج خوب کرے گا، جب کہیں نہیں ملے گا تو آخر میرے پاس آ ہی جائے گا. اب مجھے تیرے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نہ تھا تب بھی نہ تھا، لیکن تیرے آنے سے تو جو آیا ہے میرے پاس، تجھے اس بیماری سے میں نے بلایا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں تجھے دوزخ کی آگ سے بچا لوں گا. تو پھر نماز بھی پڑھے گا، پھر تو قرآن بھی پڑھے گا، پھر تو مجھے یاد بھی کرے گا، اور تو مجھ سے محبت بھی کرے گا، اور تو غیر قانونی کوئی کام نہیں کرے گا، فکر اور جو کوئی فیصلہ ہو رہا ہوگا تو اس کو تسلیم بھی کرے گا، اور تو پھر حقوق بھی دے گا، اور تو یہ کہے گا راضی کر لے، ہے رزق دینے والا ہے، یہاں بھی دے دے گا وہاں بھی دے دے گا. وہ تیرے تصورات اتنے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے کہ سوائے اللہ کے کوئی یاد نہیں رہے گا تجھے. وجہ یہ ہے ہم پریشان جو ہوتے ہیں کہ جی فلاں سے پریشان ہو گئی، فلاں چیز سے پریشان ہوگی، اب کچھ یہ دے رہا ہے فلاں دے، کچھ نہ دو، بس کیا ہے چلو ٹھیک ہے اب میں سمجھ گیا، اب میں نے اپنے دماغ میں صرف اللہ ہی کو سوچنا ہے اور کسی کو سوچنا ہی نہیں. اور اس کا سب سے بہترین اعلیٰ طریقہ یہ ہے اللہ کو اپنے سمانے دیں گے، اللہ کو اندر بالکل اللہ اللہ ہو جائے انسان کے ہر وجود پہ، کہ روحاں روحاں آپ کو اللہ یاد کرنے لگے اور استخراق کی کیفیت آ جائے. اتنی استخراق کی، آپ بڑے بڑے بزرگ کس سے ہیں، جب یہ جو تھا صحابہ کرام کیا تھا، کسی نماز میں ٹانگ کاٹ دو، کیوں کہ اللہ کی یاد میں اتنے محب ہوتے تھے، इतने डूब जाते थे कि टांग भी कट रही है उनको पता ही नहीं चल रहा। ये नहीं कि दर्द होता नहीं उसमें, होता है, लेकिन ये है कि टांग भी कट रही है, लेकिन तो अलग है तरफ इतना इश्तराक में चले गए पता ही नहीं टांग कटी नहीं कटी। वो पूछे टांग भाई काट दी मेरी टांग आपने, और हमें क्या करना पड़ता है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, उस टांग को सुन करना पड़ता है, कितना फर्क है दोनों चीज में। हमें सदा एक मोमिन की शान तो ऐसी है, इतना गुम रहे बाफी शकरगंज रहमतुल्लाह अपने एक बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे, मशहूर था, जो जहर शेख के अंदाज को मुरीदीन जानते हैं पहचानते हैं कि क्या सब मुरीदों को पता कि उसके जरिए से हजरत से बात कर लेते थे, कभी उसके हवाले से कभी बात कर लेते थे, क्योंकि हजरत साहब उसका नाम लो तो मूड अच्छा हो जाता है, बहुत प्यार करते थे। उसका इंतकाल हो गया, अब सारे मुरीद बड़े हैरान कि हम हजरत को कैसे बताएं जाके, कितना बड़ा उनको सदमा हो गया, हम हिम्मत ही नहीं हो रही किसको बताने के लिए। तो जो सीनियर थे हजरत के खलीफा में से थे, उनके बात तो करनी पड़ेगी, हजरत को बताना पड़ेगा। अब वाजिर ने हाथ जोड़ के अर्ज किया कि हजरत आपका जो बेटा था उसका इंतकाल हो गया। बड़ा डरते डरते कहा, सब बहुत परेशान कि पता नहीं हजरत पे क्या असर होगा। तो उन्होंने सोचा किसका बेटा, जी आपका बेटा, क्या नाम था, जी फला, मेरा तो ये कोई बेटा नहीं है। सुभान अल्लाह, इस उस्तखाक में ऐसे थे उनको उस वक्त में बेटे ही याद नहीं, मेरा बेटा है कौन, गम क्या होना था, वो याद क्या करने, मुझे तो पता नहीं किस बेटे का नाम आप ले रहे। वजह यह है कि इतना अल्लाह, ये हमारी असर है मोमिन की शान कि अल्लाह ताला इतना करीब हो हमारे। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे शहर है कि करीब हूं, यही तो कुर्ब है, यही तो कुर्ब है। सर में परेशानी आए क्या मोमिन को, आई नहीं परेशानी, वो समझता है हर काम अल्लाह की तरफ से हो रहा है, अल्लाह ही करेंगे, अल्लाह ही रोकेंगे, अल्लाह ही नाफरमान करते हैं, अल्लाह ही बच्चा पैदा करते हैं, अल्लाह ही बच्चों को भगा देते हैं, सब कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा है, मुझे परेशानी की जरूरत क्या, मैं तो सिर्फ अल्लाह का हूं, अल्लाह का हो जाओ। इसको कहते हैं इस तरह अखलाक में चला जाना। तो जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह को याद करना शुरू करता है तो करते करते उसकी ये पोजीशन आ जाती है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका इस पोजीशन को हासिल करने का जो है, सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा इस चीज को हासिल करने का तरीका सिलसिला नक्शबंद में मिलता है जिसमें आप दाखिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो है मराकबा, ये है मराकबा। मराकब मतलब क्या है कि मराकबे का मतलब यह है कि कुछ भी नहीं है, तू ही है। कुछ पढ़ते हैं मराकबे में आप, हजरत ने मुझे मराकबा दिया, मैं कहता हूं जिक्र कौन सा करूं, कहते अगर यहां भी जिक्र करना तो फायदा क्या हुआ। सुभान अल्लाह, हजरत ने अजीब बात की कि अगर तू अब भी जिक्र करेगा तो फायदा क्या हुआ, कहते अब जिक्र नहीं करना, मस्कूर को देखना है, उसकी जात पे फना होना है, जिक्र तो खत्म हो गया। अल्लाह जी मराकबा है कि जहां जिक्र भी खत्म हो जाए, जहां सब कुछ खत्म हो गया, अब तो मुशाहदात हैं, अब भी तू जिक्र की बात करता है। सुभान अल्लाह, जिस जन्नत में जाके बात, जन्नत में जाएंगे नमाज का कौन सा टाइम है, तो अभी तू नमाज की बात कर रहा है, अब तो तू वहां आ गया जिसके लिए नमाज पढ़ता था। तो मराकबा दुनिया में वही प्रैक्टिस है मराकबे की, अब तो तू जिक्र से मराकबे में जिक्र नहीं होता, कोई जिक्र नहीं मराकबे में, सुन हो जाता है आदमी, सुन बिल्कुल गायब, आई नहीं पता क्या, जैसे इंजेक्शन आदमी लगा देता है। आप मेहनत करें तो आगे सबक मिले आप लोगों, आराम से बच्चे आदमी और जो है जो सारे असूल जो है नक्शबंदी सिलसिले के उस पर हासिल करे आदमी, जिस तरह हासिल करे तो आदमी हम तो तरक्की करता पहुंचता है। हम कितनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं आपने, हम तो उसके पास गए थे, हमने सब कुछ छोड़ दिया था, एक तफ कर दिया था मैंने सारा, जब तक हजरत हयात है मैं आप किसी तरफ नहीं जाऊंगा, हजरत से मैं बैठना है, बस हजरत के अंदर फना होना है। एक चीज को हासिल, अल्लाह को हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है भाई, ये तो नहीं ना गए दो घंटे की जिक्र कर लिया, एक सुबह जिक्र कर लिया शाम, ये तो स्टार्ट तो हो गया, मंजिल नहीं मिलती ऐसे। कहां मुझे बताए कहां फना हुआ आदमी, कितनी प्यारी हदीस अल्लाह, चाहता तो तेरे फना होना चाहता हूँ अल्लाह ताला, तो फना होना चाहता हूं तो फना हूं कैसे, कि फना पहले उसमें हो जिससे तू जिक्र सीखेगा। बताता अल्लाह से हुब का हुब ही हुब, कि अल्लाह ताला उस जात से मोहब्बत दे, उस जात में मुझे फना कर दे जो तुझसे मोहब्बत करता है। सही हदीस है, उलमा मौजूद पूछ ले, मुझे पता है तेरी मोहब्बत ही मुझे दरकार है, इस आदमी की मोहब्बत दरकार नहीं है, चाहता तुझे ही हूं, पाना तुझे ही हूं। अल्लाह ताला कहता ठीक है, लेकिन पहले उसके अंदर फना हो कि जो मुझसे मोहब्बत करता है। कितनी बड़ी बात है। तो इसी कहते इसका नाम है फनाफी शेख होना। अभी थोड़ा तो सबक था, क्या होता है ये फनाफी शेख होना, इसी का नाम है कि जिसके जात से आप अल्लाह की तरफ जाना चाहते हैं उसकी जात में फना हो जाए। यानी क्या कि सबसे पहले आपके ख्यालों में जिंदगी में हर वक्त किसका तस्वर हो, शेख का, जिसको लोग कहते हैं शिरक हो गया। ये तस्वर शेख है, नक्शबंदी में काम ही इसी से बनता है। एक लम्हा भी, ये सुन ले, एक लम्हा भी जिसकी नजर से, जिसके दिल से, जिस ख्याल से अपने शेख का तस्वर ही गायब ना हो। इतना जमाया तस्वर को कि फैज आता है मेरे शेख के सीने से मेरे अंदर। हाँ, इतना तस्वर उसके जम जाए, इतना जम जाए अपने शेख की हयत, इतनी उसके अंदर शामिल हो जाए कि तस्वरों में आ जाए। यानी फिर एक मुकाम बचता है, अपनी शक्ल नहीं देख रहा, शेख नजर आता है उसको, खुद नहीं बोल रहा, शेख बोलता नजर आता है। ये कैफियत है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, ये तस्वुर की लाइन ऐसी है कुछ अजीब सी, लेकिन तुम वाली लाइन नहीं है, ये कुल्लो तो ये हो गया, तो फला कुल्लो तो ये हो गया, इतना कुल्लो तो ये हो गया, नहीं, ये कुछ अजीब ही चीज है। ये कैफियत है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने अपने तक पहुंचने के रास्ते बनाए, जीने बनाए। तो जब तक तस्वुर शेख मजबूत नहीं होगा, उसी तस्वर को उठा के फिर कहां जाना पड़ता है, फिर अल्लाह जब देखता है कि जम गया अपने शेख के अंदर, फना हो चुका है, हर ख्याल उसके उसी के साथ चलता है, हर बात में उसकी तरफ रुजू है अंदर से, तो जब इतना फना हो चुका है वो शख्स, इतना फना हो चुका है, फिर लता आराम से उसको निकालकर अपने तस्वर को जमाना शुरू कर देता है। धाना तो अल्लाह की तरफ ही परवाज उसकी उधर ही पड़ती है। ये हासिल किस चीज होती है, मराकबात से हासिल होती है चीज। जब इंसान मराक में बैठता है तो सब खत्म हो जाती है चीजें, जिक्र भी खत्म, तस्वर भी खत्म, बस बैठता है और ये कि फैज उतर रहा है, फला चीज का जो सबक दिए जाते हैं, हर फैज उसका होता है ना, जितने सबक है किसका, इस सबक का फैज मेरे सीने में आ रहा है, किधर से आ रहा है, मेरे शेख के सीने से आ रहा है, तस्वर तो जमा हुआ इसका, फिर इतना जम जाते हैं ख्यालात। अब यही एक चीज है जिसमें आप कहते हैं ना, अब ये मैं थोड़ी सा नुकता बता रहा हूं, इसमें थोड़ा मतलब समझने, इसमें फतवाना सुन देना। आपने बड़े बड़े बुजुर्गों की बात सुनी हुई कि जब फला जगह जा रहा था, फला जगह जा रहा था, मैं अपने तस्वर शेख किया तो फौरन मेरा शेख मेरे सामने आ गया। बात समझ आ रही ना, तो यहां ये शिर्क नहीं हो रहा है, बल्कि तस्वर इतना जम गया कि उसके ख्यालात से अल्लाह को जो मदद देना चाहता है तो उसको उस लतीफे की शक्ल में शेख को भेज देता है, जिस लतीफे को जिक्र कर रहा है वो शेख का, शेख की शक्ल अख्तियार कर लेता है, समझता है कि ये मेरे शेख है, उसने मेरा एकदम, उसने मेरी हेल्प की, उस मैं उसको तस्वर किया मैंने अपने शेख का, तो फौरन हो गया। ये है मकाम, ये अब मुझे बताएं, ये तो पढ़ने के बाद सुनने के बाद ही आधी बीमारी दूर हो जाती है इंसान की, दिल ही नहीं करता कोई गोली खाए। तो अब जब परेशानी है, तस्वर है, तो हम जिक्र भी करें, तो सोचे भी जिक्र काम नहीं कर रहा, फिर भी हमें फिर जिक्र की तरफ पलटना है, उस मुकाम को हासिल करें इंशाल्लाह। और जितना बड़ा बीमार होगा, नफ्सियाती बीमार कहते हैं जिसको, जितना बड़ा नफ्सियाती बीमार होगा, मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना ही बड़ा अल्लाह का वली बनता है। मैं लिख के देता हूं, आप जितनी गोलियां खाने वाला होगा और इंजेक्शन लगवाने वाला होगा और किसी अल्लाह वाले के पास पहुंच के ये काम शुरू कर दे जो अपने शेख की जात में फना हो जाए, मैं कहता हूं जितना सख्त वो बीमार होगा दिमागी, आपको गारंटी देता हूं उतना ही शख्स उतना ही बड़ा अल्लाह का वली बन जाता है। इतनी बड़ी चीज अल्लाह की हिकमत पे ये बीमारी है। और मैं तो अक्सर ही कहता हूं कि जिसको अल्लाह अपना दोस्त बना चाहते हैं, वली बनाते, उसको ये बीमारी जरूर दे देते हैं, उसको ये बीमारी जरूर दे देते हैं। लेकिन ये है, बाज लोग जो होते हैं बेचारे शैतान के हाथ में लग जाते हैं, शैतान के हाथ में लग जाते हैं, तो बस फिर वो जाहिर है नफ्स शैतान तो बड़ी चीज है, जाते भी हैं, बैठते भी हैं, आते भी हैं, उनकी यकीन को मजबूत नहीं होने देता। पकड़ते हैं तस्वीर जिक्र करने के लिए फिर छोड़ देते हैं, फिर जिक्र करने बैठते हैं फिर छोड़ते हैं, बातें सुनते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर जाते फिर पीछे, नहीं जी ये तो फला नहीं, बड़ा मुश्किल नहीं। ये तीन चार पॉइंट आप याद रखना जो मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह मंजिल को पहुंच जाएंगे आप, अल्लाह ने चाहा तो। मजबूती के साथ इसको हासिल करें, ये जिंदगी का हासिल है। फना फिल्ला हो जाए सब खत्म, बीमारियां सब बीमारियां आती, परेशानी तो मौत तक ही आएंगे, किसी आदमी को और किसी बीमारी को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, किसी से दुनिया आपसे कभी मुतमईन हो ही नहीं सकती। ये मैं आपको लिख कर देता हूं, दुनिया आपसे मुतमईन कभी नहीं हो सकती, क्योंकि है ही दुनिया इस कसम, क्या इस तरह शादी राजी कर लूं, इसको इस तरह शादी खुश हो जाएगा, इस तरह ये शादी चीज कर लूं, फला कर लूं, और जितनी आप ये सजा होगी कि आप उससे उतनी ज्यादा अल्लाह मोहब्बत पैदा करा देगा, उतनी ज्यादा उससे उस चीज से आपको मोहब्बत पैदा करा देगा, उसी चीज को हासिल करने की और कोशिश करेगा और कोशिश करेगा और कोशिश करेगा, उस चीज से उतनी दूर होती चली जाती है। तो एक रास्ता पकड़ ले बस, कौन सा है? फना फिल्लाह, अल्लाह के साथ में इंसान फना हो जाए। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन शफीउल मुस्लिमीन, तौहा व यासीन अल हबीबिल अमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حزننا وجدنا خطأنا عمدنا كل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسفت وما تعالى به، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، رب اغفر بهم وانت خير الراحمين، رب اغفر بهم وانت خير الراحمين، رب اغفر بهم وانت خير الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم نسألك حبك وبنج حبك ومنج حبك يا عشق يوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني أنت من العالمين، لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم ثبتنا الإيمان وأمتنا الإيمان وأشرنا يوم القيامة مع الإيمان، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البلايات ادفع بلاياتنا، يا شافي المرض اشف مرضنا، يا شافي المرض اشف مرضنا، يا شافي المرض اشف مرضنا، اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة، اے میرے مولا ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، اے میرے مولا ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو مستقیت اطمینان نصیب فرما دے، اے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی یاد نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی یاد نصیب فرما دے، اے میرے مولا ہمیں اپنا ذکر نصیب فرما دے، یا اللہ ذکر کی مجالس نصیب فرما دے، نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما دے، یا اللہ اللہ والوں کی محبت نصیب فرما، یا اللہ اللہ والوں کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، یا اللہ ہمارے سارے کام سیدھے کر دے، یا اللہ ہمارے کاموں کو سیدھا فرما دے، اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرما دے، یا اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہمارے رزق کے وسائل کھول دے، یا اللہ رزق اللہ رزق کے دروازے کھول دے. اے میرا مولا, تو اپنے فضل کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین, رحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.